ये आकाशवाणी है। अब आप रत्ना पांडे से समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 नए ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन औद्योगिक क्षेत्रों में संयुक्त अनुमानित निवेश 28,602 करोड़ रूपये होगा। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से 10 लाख प्रत्यक्ष और 30 लाख तक अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। मंत्रिमंडल ने 234 नए शहरों में 730 निजी एफएम चैनलों की ई नीलामी कराने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इस निर्णय से मातृभाषा में स्थानीय सामग्री के प्रसारण को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। स्वीकृत शहरों में कई आकांक्षी जिले हैं और कुछ वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल के निर्णय से श्रेणी 2 और 3 के शहरों में एफएम रेडियो की पहुंच बनेगी। मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना कृषि अवसंरचना कोष के विस्तार को भी मंजूरी दी। इससे देश में कृषि क्षेत्र से जुड़ी बुनियादी सुविधाएं मजबूत होगी और किसानों को मदद मिलेगी। कृषि अवसंरचना कोष किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1 लाख करोड़ रूपये की राशि के साथ वर्ष 2020 में स्थापित किया गया था। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 6,456 करोड़ रूपये की लागत से रेलवे की 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं यात्रा को आसान बनाएगी, लॉजिस्टिक लागत, तेल आयात और कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रगति की 44वीं बैठक की अध्यक्षता की। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में प्रगति की यह पहली बैठक थी। बैठक में 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनमें सड़क संपर्क और रेल की 2-2 परियोजनाएं और कोयला, बिजली और जल संसाधन की 1-1 परियोजना शामिल है। इनकी लागत 76,000 करोड़ रूपये है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार के प्रत्येक अधिकारी को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में देरी से न केवल लागत बढ़ती है बल्कि जनता परियोजना के अपेक्षित लाभों से भी वंचित हो जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक पेड़ माह के नाम अभियान परियोजना विकास करते समय पर्यावरण की रक्षा करने में मदद कर सकता है। श्री मोदी ने मुख्य सचिवों को अमृत के दूसरे चरण के तहत कार्यों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने की सलाह दी। बंदरगाह पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने प्रमुख बंदरगाहों पर कार्यरत श्रमिकों के लिए वेतन संरचना में संशोधन को मंजूरी दे दी है। वेतन संरचना में संशोधन और पेंशन लाभ सहित अन्य सेवा शर्तों में संशोधन करने के लिए द्विपक्षीय वेतन वार्ता समिति और भारतीय बंदरगाह संघ के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। बंदरगाह पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने समझौते के बाद कहा कि ये बंदरगाह श्रमिकों के लिए उचित और न्याय संगत उपचार सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ जघन्य दुष्कर्म और हत्या की घटना से पूरा देश सदमे में है। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि सब लोग मिलकर कहें कि अब और बर्दाश्त नहीं होगा। हाल में महिलाओं के खिलाफ जिस तरह से अपराध बढ़े हैं उनसे सभी को आत्ममंथन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोलकाता में जब छात्र, डॉक्टर और लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो वहीं अपराधी निडर घूम रहे थे। राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसी घटनाओं से देशभर में रोष व्याप्त होना स्वाभाविक है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच कल पूरी हो गई। 7 जिलों की 24 सीटों पर 18 सितंबर को मतदान होगा। कश्मीर घाटी में मंगलवार तक जमा 183 नामांकन पत्रों में से कुल 160 नामांकन पत्र सही पाए गए हैं। उम्मीदवार इस महीने की 30 तारीख तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। इस बीच विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। सभी राजनीतिक दल और निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।